चैतन्य चरिता अमृत अंत्य लीला अध्याय एक महाप्रभु से श्रील रूप गोस्वामी की द्वितीय भेंट। मैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को सादर नमस्कार करता हूँ, जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत को लांग सकता है और गूंगा व्यक्ति वैदिक साहित्य का उच्चारण कर सकता है। मेरा मार्ग अत्यंत कठिन है, मैं अंधा हूँ और मेरे पैर बारंबार फिसल रहे हैं, इसलिए संत जन कृपया मुझे अपनी कृपा रूपी लाठी का सहारा दें। मैं श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट तथा दास रघुनाथ, इन छह गोस्वामियों के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जिससे मेरे इस ग्रंथ के लेखन की सारी बाधाएं नष्ट हो जाएं और मेरी वास्तविक इच्छा पूरी हो सके। परम कृपालु राधा तथा मदन मोहन की जय हो। मैं लंगड़ा तथा मूर्ख हूँ, फिर भी वे मेरे निर्देशक हैं और उनके चरण कमल मेरे लिए सब कुछ हैं। वृंदावन में रत्नों के मंदिर में कल्प वृक्ष के नीचे श्री श्री राधा गोविंद उनके अत्यंत अंतरंग पार्षदों द्वारा सेवित हैं और दैदीप्यमान सिंहासन पर आसीन हैं। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। रात नृत्य के दिव्य रस के प्रवर्तक श्री श्रील गोपीनाथ वंशी वट के किनारे खड़े हैं और अपनी सुविख्यात वंशी की ध्वनि से गोपियों का ध्यान आकृष्ट करते हैं। वे सभी हमारा मंगल करें। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो। श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो। श्री अद्वैत आचार्य की जय हो तथा श्री चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्तों की जय हो। मैंने मध्य लीला के अंतर्गत श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का संक्षेप में वर्णन किया है। अब मैं उनकी अंतिम लीलाओं के विषय में वर्णन करने का प्रयास करूंगा, जो अंत्य लीला कहलाती हैं। मैंने मध्य लीला के अंतर्गत अंत्य लीला का सूत्रों के रूप में संक्षिप्त वर्णन किया है। अब मैं वृद्धावस्था के कारण प्रायः अक्षम हूँ और जानता हूँ कि किसी भी क्षण मेरी मृत्यु हो सकती है, इसलिए मैं अंत्य लीला के कुछ अंशों का पहले ही वर्णन कर चुका हूँ। इसके पूर्व लिखित सूत्रों के अनुसार मैंने जो कुछ उल्लेख नहीं किया उसका विस्तार से वर्णन करूंगा। जब श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन से जगन्नाथपुरी लौटे तो स्वरूप दामोदर गोसाई ने तुरंत ही महाप्रभु के आने का समाचार बंगाल के भक्तों को भेज दिया। यह समाचार सुनकर माता शची तथा नवद्वीप के अन्य सारे भक्त परम प्रसन्न थे और वे सभी मिलकर नीलाचल जगन्नाथपुरी के लिए चल पड़े। इस तरह कुलीन ग्राम तथा श्रीखंड के सारे भक्त एवं अद्वैत आचार्य एक साथ शिवानंद सेन से मिलने आए। शिवानंद सेन ने यात्रा की व्यवस्था की, उन्होंने हर एक का भरण पोषण किया और हर एक को निवास स्थान दिया। जगन्नाथपुरी जाते समय शिवानंद सेन ने अपने साथ एक कुत्ते को चलने दिया। वे उसे खाने को भोजन देते थे और उसका भरण पोषण करते थे। एक दिन जब शिवानंद को नदी पार करनी थी तो एक उड़िया नाविक ने कुत्ते को नाव पर नहीं चढ़ने दिया। शिवानंद दुखी थे कि कुत्ता पीछे छूट रहा है, इसलिए उन्होंने कुत्ते को नदी पार ले जाने के लिए 10 पर्ण कौड़ियां उस नाविक को दी। एक दिन जब एक शुल्क संग्राहक ने शिवानंद को रोक लिया तो उनका नौकर उस कुत्ते को पकाया चावल भात देना भूल गया। रात में जब शिवानंद सेन लौटे और भोजन कर रहे थे तो उन्होंने अपने नौकर से पूछा कि कुत्ते को भोजन मिला या नहीं। जब उन्हें ज्ञात हुआ कि उनकी अनुपस्थिति में कुत्ते को भोजन नहीं दिया गया तो वे अत्यंत दुखी हुए। तब उन्होंने तुरंत उस कुत्ते को ढूंढने के लिए 10 व्यक्ति भेजे। जब लोग असफल होकर लौट आए तो शिवानंद सेन अत्यंत दुखी हुए और उस रात उन्होंने उपवास किया। उन्होंने प्रातः काल कुत्ते की खोज की किंतु वह कहीं नहीं मिला। इससे सारे वैष्णव अत्यंत चकित हुए। इस प्रकार वे सभी अत्यंत चिंतित होकर जगन्नाथपुरी पैदल आए, जहां श्री चैतन्य महाप्रभु सदा की तरह उनसे मिले। श्री चैतन्य महाप्रभु उनके साथ भगवान का दर्शन करने मंदिर में गए और उस दिन उन्होंने सभी भक्तों के साथ भोजन भी किया। पहले की ही तरह महाप्रभु ने उन सब को आवासीय कक्ष दिए और अगले दिन प्रातः काल सारे भक्त महाप्रभु को मिलने आए। जब सारे भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु के स्थान पर आए तो उन्होंने उसी कुत्ते को महाप्रभु से कुछ ही दूरी पर बैठा हुआ देखा। श्री चैतन्य महाप्रभु उस कुत्ते के सामने हरे नारियल के गूदे का प्रसाद फेंक रहे थे। अपने ढंग से हंसते हुए वे कुत्ते से कह रहे थे, राम कृष्ण तथा हरि नाम का उच्चारण करो। कुत्ते को हरे नारियल का चत्य खाते और बारंबार कृष्ण कृष्ण का उच्चारण करते देखकर वहां उपस्थित सारे भक्त अत्यधिक आश्चर्यचकित हुए। जब शिवानंद ने कुत्ते को उस तरह बैठे तथा कृष्ण नाम का उच्चारण करते देखा तो उन्होंने अपनी सहज दीनतावश तुरंत ही कुत्ते को दंडवत प्रणाम किया, जिससे उसके प्रति किए गए अपराध क्षमा हो जाएं। अगले दिन किसी ने उस कुत्ते को नहीं देखा क्योंकि उसे आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो चुका था और वह वैकुंठ चला गया। शची माता के पुत्र श्री चैतन्य महाप्रभु की दिव्य लीलाएं ऐसी ही हैं। उन्होंने एक कुत्ते तक को हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करने के लिए प्रेरित करके उसका उद्धार कर दिया। इस बीच श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेशानुसार श्रील रूप गोस्वामी वृंदावन लौट आए। उन्होंने भगवान कृष्ण की लीलाओं से संबंधित नाटक लिखने की इच्छा की। वृंदावन में रूप गोस्वामी ने एक नाटक लिखना प्रारंभ किया। विशेषतया उन्होंने मंगलाचरण सूचक नांदी श्लोक की रचना की। गौर देश जाते हुए रूप गोस्वामी सोच रहे थे कि नाटक की घटना को किस तरह लिखा जाए। इस तरह उन्होंने कुछ टिप्पणियां बना ली थी और लिखना भी प्रारंभ कर दिया। इस तरह रूप तथा अनुपम दोनों भाई बंगाल पहुंचे, किंतु जब वे वहां पहुंच गए तो अनुपम का देहांत हो गया। तब रूप गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के लिए प्रस्थान किया, क्योंकि वे उनके दर्शन के लिए अत्यंत उत्सुक थे। अनुपम के देहांत के कारण कुछ देरी हो गई थी, इसलिए जब रूप गोस्वामी भक्तों से मिलने बंगाल गए तो वे उनसे संपर्क नहीं कर पाए, क्योंकि वे पहले ही चले गए थे। उड़ीसा प्रांत में सत्यभामापुर नामक एक गांव है। श्रील रूप गोस्वामी ने जगन्नाथपुरी जाते समय उसी गांव में एक रात विश्राम किया। सत्यभामापुर में विश्राम करते समय उन्होंने स्वप्न देखा कि एक दिव्य सुंदरी स्त्री उनके समक्ष आई और कृपा करके उन्हें यह आदेश दिया। उसने कहा, तुम मेरे ऊपर एक अलग नाटक लिखो, मेरी कृपा से यह अद्वितीय सुंदर होगा। इस स्वप्न के बाद श्रील रूप गोस्वामी ने विचार किया, यह तो सत्यभामा का आदेश है कि मैं उनके लिए एक अलग नाटक लिखूं। मैंने भगवान कृष्ण द्वारा वृंदावन तथा द्वारका में संपन्न सारी लीलाओं को एक ही पुस्तक में संकलित किया है। अब मुझे उन्हें दो नाटकों में विभाजित करना होगा। इस तरह विचार मग्न होकर वे शीघ्र ही जगन्नाथपुरी पहुंच गए। वहां आकर वे हरिदास ठाकुर की कुटिया में जा पहुंचे। हरिदास ठाकुर ने प्रेम तथा कृपावश श्रील रूप गोस्वामी को बतलाया, श्री चैतन्य महाप्रभु ने पहले ही मुझे सूचित कर दिया है कि तुम यहाँ आओगे। जगन्नाथ मंदिर में उपल भोग उत्सव देखने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु नियमित रूप से प्रतिदिन हरिदास को मिलने आते थे, अतः वे सहसा वहाँ आ पहुँचे। जब महाप्रभु वहाँ आए तो रूप गोस्वामी ने तुरंत उन्हें नमस्कार किया। हरिदास ने महाप्रभु को सूचित किया, यह रूप गोस्वामी आपको नमस्कार कर रहा है, और महाप्रभु ने उनका आलिंगन किया। तब श्री चैतन्य महाप्रभु हरिदास तथा रूप गोस्वामी के पास बैठ गए। उन सब ने एक दूसरे से कुशल समाचार पूछे और तब कुछ समय तक परस्पर बातें करते रहे। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी के विषय में पूछा तो रूप गोस्वामी ने उत्तर दिया, उनसे मेरी भेंट नहीं हुई, मैं गंगा तट के मार्ग से आया हूँ, जबकि सनातन गोस्वामी सार्वजनिक मार्ग से आए हैं, इसलिए हम एक दूसरे से मिल नहीं पाए। मैंने प्रयाग में सुना कि वे पहले ही वृंदावन चले गए हैं। इसके बाद रूप गोस्वामी ने अनुपम के देहांत के विषय में महाप्रभु को जानकारी दी। वहां रूप गोस्वामी को आवासीय कक्ष देकर श्री चैतन्य महाप्रभु चले गए। तब महाप्रभु के सारे भक्तों ने श्री लारूप गोस्वामी से भेंट की। अगले दिन चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी से फिर मिले और कृपा करके अपने सारे भक्तों का उनसे परिचय कराया। श्रीला रूप गोस्वामी ने उन सब के चरण कमलों पर सादर नमस्कार किया और सारे भक्तों ने अत्यंत कृपा करके उनका आलिंगन किया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अद्वैत आचार्य तथा नित्यानंद प्रभु से कहा, आप दोनों को पूरे हृदय से रूप गोस्वामी पर कृपा करनी चाहिए। आप दोनों की कृपा से रूप गोस्वामी इतना शक्तिशाली हो जाए कि वह भक्ति के दिव्य रस का वर्णन कर सके। इस तरह रूप गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के समस्त भक्तों के स्नेह और प्रेम के पात्र बन गए, जिनमें बंगाल से आए हुए तथा उड़ीसा में रहने वाले भक्त सम्मिलित थे। श्री चैतन्य महाप्रभु प्रतिदिन रूप गोस्वामी से मिलने जाते और मंदिर से जो भी प्रसाद पाते उसे वे रूप गोस्वामी तथा हरिदास ठाकुर को दे देते। फिर महाप्रभु उन दोनों से कुछ देर तक बातें करते और तब दोपहर के नित्य कर्म करने के लिए चले जाते। इस तरह प्रतिदिन उनके साथ चैतन्य महाप्रभु का व्यवहार चलता रहा। इस तरह महाप्रभु की दिव्य कृपा पाकर श्रील रूप गोस्वामी को अपार आनंद हुआ। अपने सारे भक्तों को साथ लेकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने गुंडीचा मंदिर की सफाई तथा धुलाई की और बाद में आईटोटा नामक बगीचे में गए और वहीं पर वन्य भोजन के रूप में उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया। जब हरिदास ठाकुर तथा रूप गोस्वामी ने देखा कि सारे भक्त प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं तथा हरि के पवित्र नाम का उच्चारण कर रहे हैं तो वे दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए। जब उन्होंने गोविंद के हाथों से श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रसाद का अवशेष प्राप्त किया तो उन्होंने उसको सादर ग्रहण किया और तब दोनों ही भाव विभोर होकर नाचने लगे। अगले दिन जब श्री चैतन्य महाप्रभु श्रील रूप गोस्वामी को मिलने गए तब सर्वज्ञ महाप्रभु इस प्रकार बोले, कृष्ण को वृंदावन से बाहर ले जाने का प्रयास मत करो क्योंकि वे कभी भी अन्यत्र नहीं जाते। यदुकुमार नाम से विख्यात कृष्ण वासुदेव कृष्ण हैं। वे उन कृष्ण से भिन्न हैं जो नंद महाराज के पुत्र हैं। यदुकुमार कृष्ण अपनी लीलाएं मथुरा तथा द्वारका नगरों में प्रकट करते हैं, किंतु नंद महाराज के पुत्र कृष्ण कभी भी वृंदावन नहीं छोड़ते। यह कहकर चैतन्य महाप्रभु दोपहर के कृत्य करने चले गए और श्रील रूप गोस्वामी आश्चर्यचकित से रह गए। श्रील रूप गोस्वामी ने सोचा, सत्याभामा ने मुझे अलग अलग दो नाटक लिखने का आदेश दिया है, अब मैं समझा कि इस आदेश की पुष्टि श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा हो गई है। पहले मैंने दो नाटकों को एक ही रचना के रूप में लिखा, अब मैं इसे विभाजित करूंगा और उन घटनाओं का वर्णन दो अलग ग्रंथों में करूंगा। मैं दो अलग अलग नांदी और दो अलग अलग प्रस्तावनाएं लिखूंगा। मैं इस विषय में गंभीरता से विचार करके घटनाओं का दो अलग अलग वर्गों में वर्णन करूंगा। रथ यात्रा उत्सव के समय रूप गोस्वामी ने भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए। उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु को रथ के आगे नाचते और कीर्तन करते भी देखा। जब रूप गोस्वामी ने उस उत्सव में श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा उच्चारित एक श्लोक सुना तो उन्होंने तुरंत ही उसी विषय से संबंधित एक अन्य श्लोक रच दिया। मैं पहले ही इन घटनाओं का वर्णन कर चुका हूँ, तो भी मैं संक्षेप में कुछ और कहना चाहता हूँ। सामान्यतया रथ के सामने नृत्य तथा कीर्तन करते समय श्री चैतन्य महाप्रभु एक श्लोक का पाठ किया करते थे, किंतु कोई यह नहीं जानता कि वे उस विशेष श्लोक को क्यों पढ़ते थे। एकमात्र स्वरूप दामोदर गोस्वामी उस अभिप्राय को जानते थे जिसके हेतु महाप्रभु वह श्लोक सुनाया करते थे। महाप्रभु के मनोभाव के अनुसार स्वरूप दामोदर गोस्वामी अन्य श्लोक उद्धृत करते थे जिससे महाप्रभु रस का आस्वादन कर सके, किंतु रूप गोस्वामी महाप्रभु के उद्देश्य को समझ गए और उन्होंने एक दूसरा श्लोक रचा जो श्री चैतन्य महाप्रभु को अच्छा लगा। जिस व्यक्ति ने मेरी युवावस्था में मेरा हृदय चुराया था अब पुनः वह मेरा स्वामी है। ये चैत्र मास की चांदनी से पूर्ण वही रातें हैं, मालती फूलों की वही सुगंध है और कदंब के वन से वही मधुर मंद वायु बह रही है। घनिष्ठ संबंध में मैं भी वही प्रेमिका हूँ, फिर भी मेरा मन यहाँ प्रसन्न नहीं है। मैं रेवा के तट पर वेत्ती वृक्ष के नीचे उसी स्थान पर लौट जाने के लिए उत्सुक हूँ, यही मेरी इच्छा है। हे प्रिय सखी, अब मैं इस कुरुक्षेत्र में अपने अत्यंत पुराने तथा प्रिय मित्र कृष्ण से मिली हूँ। मैं वही राधा रानी हूँ और हम अब मिल रहे हैं। यह अत्यंत सुहावना है, किंतु तो भी मैं यमुना तट के वन के वृक्षों के नीचे जाना चाहती हूँ। मैं वृंदावन के जंगल के भीतर उनकी मधुर वंशी से पंचम स्वर निकलते सुनना चाहती हूँ। ताड़ के एक पत्ते पर इस श्लोक को लिखने के बाद रूप गोस्वामी ने इसे अपनी कुटिया की छत में कहीं रख दिया और वे समुद्र स्नान करने चले गए। उसी समय श्री चैतन्य महाप्रभु उनसे वहां मिलने आए और जब उन्होंने छत में रखे ताड़ पत्र को देखा और उन्हें श्लोक दिखाई दिया तो वे उसे पढ़ने लगे। यह श्लोक पढ़कर श्री चैतन्य महाप्रभु आनंदमय प्रेम से अभिभूत हो गए। उसी समय समुद्र स्नान करके रूप गोस्वामी लौटे। महाप्रभु को देखकर श्री रूप गोस्वामी नमस्कार करने के लिए आंगन में दंड की तरह गिर पड़े। महाप्रभु ने प्रेम से उन्हें एक हल्की चपत लगाई और इस प्रकार बोले, मेरा हृदय अत्यंत गोपनीय है, तुमने किस तरह मेरे मन को जान लिया। यह कहकर उन्होंने रूप गोस्वामी का गाढ़ आलिंगन किया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने वह श्लोक ले लिया और उसे स्वरूप दामोदर को परीक्षा करने के लिए दिखलाया। तब उन्होंने उनसे पूछा, रूप गोस्वामी किस तरह मेरे मन को समझ सका? महाप्रभु ने पूछा। स्वरूप दामोदर ने उत्तर दिया, मेरी समझ में तो यही आता है कि आपने पहले ही उस पर अपनी अहेतुकी कृपा प्रदान कर दी है, अन्यथा इस अर्थ को कोई नहीं समझ सकता था। इसलिए मेरा अनुमान है कि आपने इसके पूर्व उस पर अपनी अहेतुकी कृपा कर दी है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, रूप गोस्वामी मुझसे प्रयाग में मिला था, उसे उपयुक्त व्यक्ति जानकर मैंने स्वभावतः उस पर अपनी कृपा कर दी थी। तब मैंने उसे अपनी दिव्य शक्ति भी प्रदान की। अब तुम भी उसे विशेष करके दिव्य रसों के विषय में उपदेश दो। स्वरूप दामोदर ने कहा, जैसे ही मैंने इस श्लोक की अद्वितीय रचना देखी, मैं तुरंत समझ गया कि आपने उसे अपनी विशेष कृपा प्रदान की है। परिणाम देखकर उस परिणाम के कारण को समझा जा सकता है। स्वर्ग में बहने वाली गंगा नदी सुनहरे कमल के फूलों से पूर्ण है और उस लोक के निवासी हम फूलों के डंठलों को खाते हैं। इसीलिए हम अन्य किसी लोक के निवासियों की अपेक्षा अधिक सुंदर हैं। यह कार्य कारण नियम के फल स्वरूप है, क्योंकि यदि सत्व गुणी भोजन किया जाता है तो सत्व गुण उसके शरीर का सौंदर्य बढ़ा देता है। चातुर्मास्य के चार महीनों श्रावण भाद्र अश्विन तथा कार्तिक के बाद बंगाल के सारे वैष्णव अपने अपने घर लौट गए, किंतु श्रील रूप गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की शरण में जगन्नाथपुरी में ही रहे। एक दिन जब रूप गोस्वामी अपनी पुस्तक लिख रहे थे, तब श्री चैतन्य महाप्रभु वहां सहसा प्रकट हुए। जैसे ही हरिदास ठाकुर तथा रूप गोस्वामी ने महाप्रभु को आते देखा, वे दोनों खड़े हो गए और वे उन्हें सादर नमस्कार करने के लिए दंडवत भूमि पर गिर गए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने दोनों का आलिंगन किया और बैठ गए। महाप्रभु ने पूछा, तुम किस तरह की पुस्तक लिख रहे हो? उन्होंने एक ताड़ पत्र उठाया जो पांडुलिपि का पन्ना था, और जब महाप्रभु ने सुंदर हस्तलिपि देखी तो उनका मन अतीव प्रसन्न हो गया। इस तरह प्रसन्न होकर महाप्रभु ने यह कहते हुए लिखावट की प्रशंसा की, रूप गोस्वामी की हस्तलिपि मोतियों की पंक्तियों की तरह है। उस हस्तलिपि को पढ़ते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस पृष्ठ पर एक श्लोक देखा और ज्यों ही उन्होंने उसे पढ़ा, वे भावमय प्रेम से अभिभूत हो गए। मैं नहीं जानता हूं कि कृष्ण के दो अक्षरों ने कितना अमृत उत्पन्न किया है। जब कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण किया जाता है तो यह मुख के भीतर नृत्य करता प्रतीत होता है, तब हमें अनेका अनेक मुखों की इच्छा होने लगती है। जब यही नाम कानों के छिद्रों में प्रविष्ट होता है तो हमारी इच्छा करोड़ों कानों के लिए होने लगती है, और जब यह नाम हृदय के आंगन में नृत्य करता है तो यह मन की गतिविधियों को जीत लेता है, जिससे सारी इंद्रियां जड़ हो जाती हैं। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने यह श्लोक पढ़ा तो हरिदास ठाकुर उस ध्वनि को सुनकर अत्यंत प्रफुल्लित हो उठे तथा इसके अर्थ की प्रशंसा करते हुए नाचने लगे। भगवान के नाम के सौंदर्य तथा उसकी दिव्य स्थिति को भक्तों के मुख से प्रामाणिक शास्त्रों का श्रवण करके सीखना होता है। हम अन्यत्र कहीं भी भगवान के पवित्र नाम की मधुरता को नहीं सुन सकते। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास तथा रूप गोस्वामी दोनों का आलिंगन किया और दोपहर के कृत्य करने के लिए समुद्र की ओर चले गए। अगले दिन हमेशा की तरह भगवान जगन्नाथ के मंदिर जाने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य रामानंद राय तथा स्वरूप दामोदर से मिले। तब वे सभी मिलकर श्रील रूप गोस्वामी के पास गए और रास्ते में महाप्रभु ने उनके गुणों की अत्यधिक प्रशंसा की। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने दो महत्वपूर्ण श्लोक सुनाए तो उन्हें परम सुख हुआ। इस तरह वे अपने भक्त की प्रशंसा करने लगे मानो उनके पांच मुख हो। सार्वभौम भट्टाचार्य तथा रामानंद की परीक्षा लेने के लिए ही उनके समक्ष महाप्रभु श्री रूप गोस्वामी के दिव्य गुणों की प्रशंसा करने लगे। स्वभावतः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने शुद्ध भक्त के किसी अपराध को गंभीरता से नहीं लेते। भक्त जो भी स्वल्प सेवा करता है उसे भगवान इतनी बड़ी सेवा के रूप में स्वीकार करते हैं कि वे अपने आप को भी अर्पित करने के लिए प्रस्तुत रहते हैं। अन्य वरदानों के बारे में क्या कहा जाए। परम भगवान पुरुषोत्तम के नाम से विख्यात हैं और सबसे महान हैं। उनका मन निर्मल है, वे इतने दयालु हैं कि यदि उनका सेवक कोई बड़ा अपराध भी कर दे तो वे उसे गंभीरता से नहीं लेते। हाँ, यदि उनका सेवक छोटी सी भी सेवा करता है तो भगवान उसे बहुत बड़ी सेवा के रूप में स्वीकार करते हैं। यदि कोई ईर्ष्यालु व्यक्ति भगवान की निंदा भी करता है तो वे उसके प्रति कभी क्रोध प्रकट नहीं करते। ऐसे हैं उनके महान गुण। जब हरिदास ठाकुर तथा रूप गोस्वामी ने देखा कि श्री चैतन्य महाप्रभु अपने अंतरंग भक्तों के साथ आए हैं तो उन दोनों ने तुरंत भूमि पर दंड की तरह गिरकर उनके चरण कमलों की वंदना की। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनके निजी भक्त रूप गोस्वामी हरिदास ठाकुर से मिले। तब महाप्रभु अपने भक्तों के साथ एक चबूतरे पर बैठ गए। रूप गोस्वामी तथा हरिदास ठाकुर उस चबूतरे के नीचे बैठे जहां श्री चैतन्य महाप्रभु बैठे थे। यद्यपि सभी लोग उनसे महाप्रभु तथा उनके पार्षदों की बराबरी में बैठने का आग्रह कर रहे थे, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को पहले वाला श्लोक पढ़ने का आदेश दिया, तो अत्यधिक लज्जावश रूप गोस्वामी ने इसे नहीं पढ़ा, अपितु चुप रहे। तब स्वरूप गोस्वामी ने वह श्लोक सुनाया, और जब सारे भक्तों ने इसे सुना तो उनके मन आश्चर्यचकित हो उठे। हे सखी, अब मैं इस कुरुक्षेत्र में अपने पुराने तथा प्रिय मित्र कृष्ण से मिली हूँ। मैं वही राधा रानी हूँ और अब हम मिल रहे हैं। यह अत्यंत सुहावना है, किंतु फिर भी मैं यमुना तट के वन के वृक्षों के नीचे जाना चाहती हूँ। मैं वृंदावन के जंगल के भीतर उनकी मधुर वंशी से पंचम स्वर निकलते सुनना चाहती हूँ। यह श्लोक सुनकर रामानंद राय तथा सार्वभौम भट्टाचार्य दोनों ने चैतन्य महाप्रभु से कहा, आपकी विशेष कृपा के बिना यह रूप गोस्वामी किस तरह आपके मन को समझ सकता था। श्रील रामानंद राय ने स्वीकार किया कि इसके पूर्व श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनके हृदय को वह शक्ति प्रदान कर दी थी, जिससे कि वे उच्च तथा निर्णायक कथन को व्यक्त कर सके, जिस तक ब्रह्मा जी तक की पहुंच नहीं है। उन्होंने कहा, यदि आपने पहले उस पर कृपा न की होती तो उसके लिए आपके आंतरिक भावों को व्यक्त कर पाना संभव न हो पाता। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हे प्रिय रूप, तुम अपने नाटक का वह श्लोक सुनाओ जिसे सुनने पर सारे लोगों के दुख तथा शोक भाग जाते हैं। जब महाप्रभु उसी के लिए बारंबार आदेश देते रहे, तब रूप गोस्वामी ने वह श्लोक जो आगे आया है सुनाया। मैं नहीं जानता हूं कि कृष्ण शब्द के दो अक्षरों ने कितना अमृत उत्पन्न किया है। जब कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण किया जाता है, तब यह मुख के भीतर नृत्य करता प्रतीत होता है। तब हमें अनेका अनेक मुखों की इच्छा होने लगती है। जब वही नाम कानों के छिद्रों में प्रविष्ट होता है, तब हमारी इच्छा करोड़ों कानों के लिए होने लगती है। और जब यह पवित्र नाम हृदय के आंगन में नृत्य करता है, तब यह मन की गतिविधियों को जीत लेता है, जिससे सारी इंद्रियां जड़ हो जाती हैं। जब श्री चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्तों ने, विशेष रूप से श्री रामानंद राय ने यह श्लोक सुना, तो वे दिव्य आनंद से पूरित हो गए और आश्चर्यचकित रह गए। सबने स्वीकार किया कि यद्यपि उन्होंने भगवान के पवित्र नाम की महिमा विषयक अनेक कथन सुन रखे हैं, किंतु उन्होंने रूप गोस्वामी जैसा मधुर वर्णन कभी नहीं सुना। रामानंद राय ने पूछा, तुम किस तरह का नाटक लिख रहे हो? हम समझ सकते हैं कि यह निष्कर्ष रूप सिद्धांतों की खान है। स्वरूप दामोदर ने श्रील रूप गोस्वामी की ओर से उत्तर दिया, उसने भगवान कृष्ण की लीलाओं पर नाटक लिखना चाहा था। उसने एक ही पुस्तक में वृंदावन लीलाओं तथा द्वारका एवं मथुरा की लीलाओं का वर्णन करने की योजना बनाई थी। उसने इस तरह से प्रारंभ किया, किंतु अब श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेशानुसार वह इसे दो भागों में विभाजित करके दो नाटक लिख रहा है। एक मथुरा तथा द्वारका की लीलाओं से संबंधित और दूसरा वृंदावन लीलाओं से संबंधित। ये नाटक विदग्ध माधव तथा ललित माधव कहलाते हैं। इन दोनों में भगवत प्रेम रस का अद्भुत वर्णन हुआ है। रामानंद राय ने कहा, कृपया तुम विदग्ध माधव का नांदी श्लोक सुनाओ, जिससे मैं सुन सकूं और परीक्षा कर सकूं। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु का आदेश होने पर श्री रूप गोस्वामी ने श्लोक सुनाया। श्री कृष्ण की लीलाएं भौतिक जगत में व्याप्त कष्टों को कम करें और अनावश्यक इच्छाओं को समाप्त करें। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की लीलाएं शिखरणी के समान है, जो दही तथा मिश्री का मिश्रण है। वे चंद्रमा पर उत्पन्न अमृत के गर्भ को भी नीचा दिखाने वाली हैं, क्योंकि वे श्रीमती राधा रानी तथा गोपियों के सघन प्रेम व्यवहार की मधुर सुगंधी को व्याप्त करने वाली हैं। रामानंद राय ने कहा, अब कृपया अपने आराध्य श्री विग्रह की महिमा का वर्णन सुनाओ। किंतु रूप गोस्वामी संकोच कर रहे थे, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु उपस्थित थे। किंतु महाप्रभु ने यह कहते हुए रूप गोस्वामी को प्रोत्साहित किया, तुम संकोच क्यों कर रहे हो? तुम इसे सुनाओ, जिससे भक्तगण तुम्हारे ग्रंथ के शुभ फल को सुन सके। जब रूप गोस्वामी ने उनका श्लोक सुनाया तो चैतन्य महाप्रभु ने इसको अस्वीकृत कर दिया, क्योंकि इसमें उनकी निजी महिमा का वर्णन था। उन्होंने यह मत व्यक्त किया कि यह अतिशयोक्ति पूर्ण कथन है। परम भगवान जो कि श्रीमती शची देवी के पुत्र के रूप में सुविख्यात हैं, आपके हृदय के अंतरतम प्रदेश में स्थित हो। पिघले सोने की द्युति से दीप्यमान वे अपनी अहित की कृपा से कलियुग में वह प्रदान करने के लिए अवतरित हुए हैं, जो अन्य अवतारों ने कभी नहीं दिया। वे भक्ति का सर्वाधिक उच्च रस अर्थात माधुर्य प्रेम रस प्रदान करने के लिए अवतरित हुए हैं। उपस्थित समस्त भक्तों ने इस श्लोक की इतनी अधिक प्रशंसा की कि उन्होंने उनके दिव्य उच्चारण के लिए रूप गोस्वामी के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। रामानंद राय ने पूछा, तुमने पात्रों के समूह का परिचय किस तरह कराया है? रूप गोस्वामी ने उत्तर दिया, सारे पात्र प्रवर्तक शीर्षक के अंतर्गत उपयुक्त समय पर एकत्र होते हैं। जब उपयुक्त समय आने पर पात्रों का प्रवेश होता है तो यह प्रवेश प्रवर्तक कहलाता है। वसंत ऋतु आ चुकी थी तथा उस ऋतु के पूर्ण चंद्रमा ने सभी प्रकार से पूर्ण भगवान को रात में सुंदरी राधा रानी से मिलने के नवीन आकर्षण से प्रेरित किया, जिससे उनकी लीलाओं का सौंदर्य बढ़ सके। रामानंद राय ने कहा, कृपया तुम मुझे प्रवचना भाग सुनाओ, जिससे मैं सुन सकूं तथा परीक्षा कर सकूं। श्री रूप ने उत्तर दिया, मैं सोचता हूं कि श्री चैतन्य महाप्रभु की प्रवचना सुनने की इच्छा है। इस समय उपस्थित भक्तगण निरंतर भगवान के विषय में सोचते रहते हैं, अतएव वे बहुत उच्च हैं। विदग्ध माधव नामक यह ग्रंथ भगवान कृष्ण की लीलाओं का काव्यात्मक अलंकारों के विभूषणों के साथ चित्रण करता है। वृंदावन के भीतरी भूभाग गोपियों के साथ कृष्ण के नृत्य के लिए उपयुक्त मंच प्रस्तुत करते हैं। इसलिए मैं सोचता हूँ कि हम जैसे लोग जिन्होंने भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास किया है, उनके पुण्य कर्म अब परिपक्व हो चुके हैं। हे विद्वान भक्तों, मैं स्वभाव से अज्ञान तथा दीन हूँ, फिर भी यद्यपि मुझसे यह विदग्ध माधव निकला है, तो भी यह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दिव्य गुणों के वर्णन से भरा पड़ा है। इसलिए क्या ऐसा ग्रंथ जीवन के उच्चतम लक्ष्य प्राप्ति को पूरा नहीं कर सकेगा? यद्यपि इसके काट को निम्न श्रेणी का व्यक्ति भी जला सकता है, तो भी यह अग्नि सोने को शुद्ध कर सकती है। इसी तरह यद्यपि मैं स्वभाव से अत्यंत नीच हूँ, फिर भी यह ग्रंथ स्वर्ण जैसे भक्तों के हृदयों के भीतर की धूल को स्वच्छ करने में सहायता कर सकता है। तब रामानंद राय ने कृष्ण तथा गोपियों के मध्य प्रेम व्यापार के कारणों के विषय में यथा पूर्व राग, प्रेम विकार, प्रेम चेष्टा तथा कृष्ण के लिए गोपियों के प्रेम के जागृत होने को प्रकट करने वाले पत्रों के आदान प्रदान के विषय में पूछा। श्रील रूप गोस्वामी ने क्रमशः रामानंद राय द्वारा पूछी गई हर बात बता दी। उनकी व्याख्या सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्त आश्चर्यचकित रह गए। कृष्ण के प्रति पहले के अनुराग, पूर्व राग का अनुभव करते हुए राधा रानी ने सोचा, क्योंकि मैंने कृष्ण नामक व्यक्ति का नाम सुन रखा है, इसलिए मेरी सद्बुद्धि नष्ट हो चुकी है। फिर एक दूसरा व्यक्ति भी है जो अपनी वंशी इस तरह बजाता है कि उसकी ध्वनि सुनकर मेरे हृदय में गहन उन्माद उत्पन्न होता है। यही नहीं, एक अन्य व्यक्ति भी है जिसके प्रति मेरा मन अनुरक्त हो उठता है, जब मैं उसके चित्र में उसका सुंदर बिजली जैसा तेज देखती हूँ। इसलिए मैं सोचती हूँ कि मुझे धिक्कार है, क्योंकि मैं एक साथ तीन व्यक्तियों पर आसक्त हूँ। इससे मेरे लिए मर जाना ही श्रेयस्कर होगा। हे प्रिय सखी, श्रीमती राधा रानी के हृदय की इन वेदनाओं को ठीक कर पाना अत्यंत कठिन है। यदि इसका कोई उपचार भी किया जाए तो अपयश ही हाथ लगेगा। हे अतीव सुंदर, तुम्हारे चित्र की कलात्मक सुंदरता ने मेरे मन के भीतर छाप छोड़ दी है, क्योंकि अब तुम मेरे मन के भीतर बसे हुए हो, इसलिए मैं तुम्हारी छाप के कारण उद्विग्न होकर जहाँ कहीं भी भागना चाहती हूँ। हे मित्र, मैं पाती हूँ कि तुम मेरा रास्ता रोक रहे हो। अपने समक्ष मोर पंख को देखकर यह भाला एकाएक कांपने लगती है। जब कभी यह गुंजा की माला देखती है तो अश्रुपात करती है और उच्च स्वर से क्रंदन करती है। मैं नहीं जानती हूँ कि इस बेचारी भाला के हृदय में किस तरह का नवीन भाव प्रवेश कर गया है। इसने इसे नर्तक की नाचने की प्रवृत्ति से ओत प्रोत कर दिया है, जिससे रंग मंच पर अद्भुत अद्वितीय नृत्य उत्पन्न होता रहता है। श्रीमती राधा रानी ने अपनी नित्य संगिनी विशाखा से कहा, हे प्रिय सखी, यदि कृष्ण मेरे प्रति क्रूर हैं, तो तुम्हें रोने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं होगा। तब मुझे मरना होगा, किंतु बाद में तुम मेरे लिए एक काम करना। मेरे अंतिम संस्कार में मेरा शरीर तमाल वृक्ष पर उसी तरह रखना जिस तरह मेरी भुजाएं लताओं के समान तमाल वृक्ष का आलिंगन करती रहे, जिससे मैं अविचल भाव से वृंदावन में सदा सदा के लिए रह सकती हूँ। यही मेरी अंतिम विनती है। रामानंद राय ने पूछा, भावात्मक प्रेम के क्या लक्षण हैं? रूप गोस्वामी ने उत्तर दिया, कृष्ण विषयक भावात्मक प्रेम का यह स्वभाव है। हे सुंदरी, यदि कोई नंद महाराज के पुत्र भगवान कृष्ण के प्रति भगवत प्रेम उत्पन्न कर लेता है, तो इस प्रेम के सारे कटु तथा मधुर प्रभाव उसके हृदय में प्रकट हो जाएंगे। ऐसा भगवत प्रेम दो तरह से कार्य करता है। भगवत प्रेम के विषैले प्रभाव सर्प के गहन तथा ताजे विष को परास्त कर देते हैं, फिर भी इसके साथ ही दिव्य आनंद होता है, जो नीचे बहकर सर्प के विषैले प्रभावों को तथा अपने सिर पर अमृत डालने से प्राप्त सुख को भी परास्त कर देता है। यह दोहरा प्रभावशाली अनुभव होता है, एक साथ विषैला तथा अमृतमय। रामानंद राय ने आगे पूछा, भगवत प्रेम के उदय होने के स्वाभाविक लक्षण क्या हैं? रूप गोस्वामी ने उत्तर दिया, ये भगवत प्रेम के स्वाभाविक लक्षण हैं। जब कोई अपनी प्रिया से अपनी प्रशंसा सुनता है, तो वह बाहर से उदासीन बना रहता है, किंतु अपने हृदय में पीड़ा का अनुभव करता है। जब वह अपनी प्रिया को अपने ऊपर दोषारोपण करते सुनता है, तो वह उन्हें परिहास मानता है और आनंद लेता है। जब वह अपनी प्रेमिका में दोष देखता है, तो इससे उसका प्रेम घटता नहीं, न ही प्रेमिका के सद्गुण उसके सहज स्नेह को बढ़ा पाते हैं। इस तरह स्वाभाविक प्रेम सभी परिस्थितियों में चलता रहता है। इसी तरह स्वाभाविक भगवत प्रेम हृदय के भीतर कार्य करता है। मेरी क्रूरता सुनकर चंद्रमुखी राधा रानी अपने दुखी हृदय में किसी न किसी तरह का धैर्य धारण कर सकती है, किंतु तब वह मेरे विरुद्ध हो सकती है अथवा उग्र काम देव के धनुष द्वारा उत्पन्न वासनामयी इच्छाओं से भयभीत होकर वह अपना जीवन भी त्याग सकती है। हाय, मैंने उसकी इच्छा रूपी कोमल लता को जिसमें फल आने ही वाले थे मूर्खता पूर्वक उखाड़ दिया है। हे सखी, उनकी संगति तथा आलिंगन के सुख की इच्छा से मैंने अपने गुरु जनों तक की उपेक्षा की और उनके समक्ष अपनी लज्जा तथा गंभीरता को शिथिल कर दिया। इसके अतिरिक्त यद्यपि तुम मेरी सर्वोत्तम सखी हो और मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय हो, किंतु मैंने तुम्हें इतना कष्ट पहुंचाया है। निसंदेह मैंने अपने पति व्रता व्रत को भी ताक पर रख दिया है, जिसका सर्वोच्च भद्र महिलाएं पालन करती हैं। हाय, यद्यपि वह इस समय मेरी उपेक्षा कर रहे हैं, मैं इतनी पापिन हूँ कि अभी भी जीवित हूँ, इसलिए मुझे अपने तथा कथित धैर्य को धिक्कारना चाहिए। मैं अपने घर में क्रीड़ाओं में व्यस्त थी और बचपन की अबोधता के कारण अच्छा बुरा नहीं जानती थी, इसलिए क्या आपके लिए यह उचित है कि आपने पहले हमें अपनी ओर इस तरह आकृष्ट किया और फिर हमारी उपेक्षा की? अब आप हमसे उदासीन हो, क्या आप सोचते हो कि यह उचित है? हमारे हृदय दुखमय परिस्थितियों से इतने दूषित हैं कि हम निश्चित रूप से यमराज के लोक जा रही हैं। फिर भी कृष्ण अपनी सुंदर प्रेममय मुस्कान नहीं त्यागते, जो ठगी की चालों से पूर्ण है। हे श्रीमती राधा रानी, तुम बड़ी बुद्धिमान हो, तुमने किस तरह पड़ोस के ग्वालों के धोखेबाज लंपट के प्रति इतना अधिक प्रेम विकसित कर लिया। हे कृष्ण, तुम समुद्र के तुल्य हो, श्रीमती राधा रानी रूपी नदी काफी दूर से अपने पति रूपी वृक्ष को पीछे छोड़ती, सामाजिक बंधन के पुल को तोड़ती और वरिष्ठ जनों रूपी शिखरों को बलपूर्वक पार करती हुई तुम तक पहुंची है। तुम्हारे प्रेम की नई उमंगों के कारण यहाँ आकर उस नदी ने अब तुम्हारी शरण प्राप्त की है, किंतु तुम हो कि उसे प्रतिकूल शब्दों की लहरों से वापस करने का प्रयास कर रहे हो। यह कैसा है कि तुम ऐसा विमुक्त मनोभाव फैला रहे हो? श्रील रामानंद राय ने आगे पूछा, तुमने वृंदावन, दिव्य वंशी की ध्वनि तथा कृष्ण एवं राधिका के संबंध का वर्णन किस तरह किया है? कृपया मुझे यह सब बतलाओ, क्योंकि तुम्हारी कवित्व शक्ति अद्भुत है। रूप गोस्वामी रामानंद राय को नमस्कार करके उनके प्रश्नों का क्रमशः उत्तर देने लगे। नव विकसित आम्र की मंजरियों से रिसती हुई मीठी सुगंधित मधु पुनः पुनः भौरों के समूहों को आकृष्ट कर रही है और यह वन चंदन वृक्षों से पूर्ण मलय पर्वत से आने वाली मंद गतिमान वायु से कंपित हो रहा है। इस तरह यह वृंदावन विपिन मेरे दिव्य आनंद को वर्धित कर रहा है। हे प्रिय मित्र, देखो तो यह वृंदावन का जंगल किस तरह दिव्य लताओं तथा वृक्षों से परिपूर्ण है। लताओं के सिरों पर फूल लदे हैं और उन्मत भौरे उनके चारों ओर गुनगुना रहे हैं। ऐसे गुनगुनाते गीत कानों को अच्छे लगते हैं और वैदिक स्रोतों को भी मात कर जाते हैं। हे प्रिय मित्र, यह वृंदावन का वन हमारी इंद्रियों को विविध रूपों से बड़ा आनंद प्रदान करता है। कहीं भौरों के झुंड गा रहे हैं तो कहीं मंद वायु सारे वातावरण को शीतल कर रही है। कहीं लताएं एवं वृक्षों की टहनियां नाच रही हैं। मल्लिका पुष्प अपनी सुगंध बिखेर रहे हैं और अनार के फल निरंतर प्रचुर रस की धार बहा रहे हैं। कृष्ण की लीला वंशी 3 अंगुल लंबी है और यह इंद्र नील रत्नों से जटित है। वंशी के छोरों पर अरुण रत्न पन्ना लगे हैं जो सुंदर ढंग से चमचमा रहे हैं। दोनों छोरों के बीच वंशी सोने के पत्थर से मढ़ी है तथा हीरों से धमक रही है। यह शुभ वंशी कृष्ण को सुहावनी लगती है तथा उनके हाथ में दिव्य आभा से धमक रही है। हे मेरी प्रिय सखी मुरली, ऐसा प्रतीत होता है कि तुम अत्यंत उत्तम परिवार में उत्पन्न हुई हो, क्योंकि तुम्हारा निवास स्थान श्री कृष्ण के हाथों में है। जन्म से तुम सीधी सादी हो और तनिक भी कुटिल नहीं हो, तो फिर तुमने इस खतरनाक मंत्र में दीक्षा क्यों ली जो एकत्र हुई गोपियों को मोहित करता है। हे मेरी प्रिय सखी वंशी, तुम अनेक छिद्रों या दोषों से युक्त हो। तुम हल्की कठोर रसहीन तथा गांठों से भरी हो, किंतु किस तरह के पुण्य कर्मों ने तुम्हें भगवान द्वारा चुंबित होने तथा उनके हाथों द्वारा आलिंगित होने के लिए प्रवृत्त किया है। कृष्ण की वंशी की दिव्य ध्वनि ने वर्षा के बादलों की गति रोक दी, गंधर्वों को आश्चर्यचकित कर दिया और सनक तथा सनंदन जैसे महान संत पुरुषों के ध्यान को चलायमान कर दिया। इसने ब्रह्मा के भीतर आश्चर्य उत्पन्न कर दिया। इसने गहन उत्सुकता उत्पन्न कर दी जिससे बलि महाराज का मन चंचल हो उठा, जो अन्यथा दृढ़ता से स्थित थे। लोकों को धारण करने वाले महाराज अनंत को चारों ओर चक्कर लगवाया और यह ब्रह्मांड के कठिन आवरणों को भेद गई। इस तरह कृष्ण के हाथों की वंशी की ध्वनि ने अद्भुत स्थिति उत्पन्न कर दी। कृष्ण की आंखों की सुंदरता श्वेत कमल की सुंदरता को मात कर जाती है। उनका पीतांबर कुमकुम के नवीन अलंकरणों की चमक को मात करता है तथा उनके चुने हुए जंगली फूलों के गहने सर्वश्रेष्ठ वस्त्रों की लालसा को दमित कर देते हैं। उनका शारीरिक सौंदर्य मरकत मणि से भी अधिक मन को आकृष्ट करने वाली द्युति से युक्त है। हे अतीव सुंदर सखी, तुम अपने समक्ष खड़े दिव्य आनंद से पूर्ण परम भगवान को स्वीकार करो। उनकी आंखों की कौरें इधर उधर घूमती हैं और उनकी भौहें उनके कमल मुख पर भौरों के समान धीरे धीरे गति करती हैं। वे अपने वाम पद के घुटने के नीचे दक्षिण पद रख कर खड़े हैं। उनके शरीर का मध्य भाग 3 स्थानों से टेढ़ा त्रिभंगी है। उनकी ग्रीवा शालीनता पूर्ण ढंग से एक और झुकी हुई है। वे अपनी वंशी को अपने कली जैसे बंद होठों पर रखे हैं और उनकी अंगुलियां उन पर इधर उधर चल रही हैं। हे सुमुखी, हमारे समक्ष खड़ा यह कौन रचनाकार है? वह अपनी प्रेममयी चितवनों की तेज छैनियों से अनेक स्त्रियों के पतिव्रत धर्म रूपी कठोर पत्थरों को भेद रहा है और उसी के साथ वह अपने शरीर की कांति से जो असंख्य मरकत मणियों की चमक का अतिक्रमण करने वाली हैं, अपनी लीलाओं के लिए गोपनीय मिलन कक्ष का निर्माण कर रहा है। हे प्रिय सखी, यह नवयुवक श्री कृष्ण जो कि नंद महाराज के कुल का चंद्रमा है, इतना सुंदर है कि वह मूल्यवान मणियों के गुच्छों के सौंदर्य को भी परास्त करने वाला है। उसकी वंशी की ध्वनि की जय हो, क्योंकि यह चतुराई पूर्वक साध्वी स्त्रियों के धैर्य का भंग करता है और जिससे उनके कटिबंध तथा कसे हुए वस्त्र ढीले हो जाते हैं। श्रीमती राधा रानी की आंखों का सौंदर्य नए खिले नीले कमलों के सौंदर्य को बलपूर्वक निगल जाता है और उनके मुख की सुंदरता पूरी तरह खिले कमलों के समूचे वनों का भी अतिक्रमण कर जाती है। उनके शरीर की कांति स्वर्ण को भी कष्टप्रद स्थिति में डालती प्रतीत होती है। इस तरह श्रीमती राधा रानी का अद्भुत अद्वितीय सौंदर्य वृंदावन में उदित हो रहा है। यद्यपि चंद्रमा का तेज रात्रि के प्रारंभ में चमकीला रहता है, किंतु दिन में वह मंद पड़ जाता है। इसी तरह यद्यपि दिन के समय कमल सुंदर लगता है, किंतु रात्रि में वह बंद हो जाता है। किंतु हे मित्र, मेरी प्रियतमा श्रीमती राधा रानी का मुख चाहे दिन हो या रात सदा सुंदर तथा तेज युक्त रहता है, इसलिए उसके मुख की तुलना किससे की जा सकती है? जब श्रीमती राधा रानी मुस्कुराती हैं, तो प्रसन्नता की लहरें उसके गालों पर बहने लगती हैं और उसकी तिरछी बौहें कामदेव के धनुष के समान नृत्य करने लगती हैं। उसकी चितवन इतनी मोहक है कि यह मदोन्मत चंचल नृत्य करते भौरों के तुल्य लगती है। उस भौरे ने मेरे हृदय रूपी कोश को धस लिया है। श्रील रूप गोस्वामी द्वारा सुनाए गए इन श्लोकों को सुनकर श्रील रामानंद राय ने कहा, तुम्हारी कविता की अभिव्यक्ति अमृत की निरंतर वर्षा के तुल्य है। कृपया तुम मुझे अपने दूसरे नाटक का प्रस्तावनात्मक अंश सुनाओ। श्रील रूप गोस्वामी ने कहा, आपकी तेजस्वी सूर्य प्रकाश के समान उपस्थिति में मैं जुगनू के प्रकाश के समान नगण्य हूँ। आपके समक्ष मुख खोलना तक मेरे लिए दृष्टता होगी। यह कहकर उन्होंने ललित माधव का प्रारंभिक श्लोक सुनाया। मुकुंद की सुंदर चंद्रमा तुल्य महिमा असुरों की पत्नियों के कमल समान मुखों को तथा ज्योतिर्मान चक्रवाक पक्षियों के तुल्य उनके उठे स्तनों को पीड़ा पहुंचाती है, किंतु यही महिमा उनके भक्तों को जो कि चकोर पक्षियों के तुल्य हैं आनंद प्रदान करने वाली है। वह महिमा आप सबको सदैव आनंद प्रदान करे। जब श्रील रामानंद राय ने द्वितीय नांदी श्लोक के विषय में आगे पूछताछ की तो श्रील रूप गोस्वामी थोड़ा हिचकिचाए, किंतु तो भी उन्होंने पढ़ना शुरू किया। चंद्रमा सदृश पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो कि शची नंदन कहलाते हैं, अपना भक्तिमय प्रेम वितरित करने के लिए अब पृथ्वी पर प्रकट हुए हैं। वे ब्राह्मण समुदाय के सम्राट हैं। वे अज्ञान के समस्त अंधकार को भगा सकते हैं और विश्व के हर एक व्यक्ति के मन को वश में कर सकते हैं। वह उदीयमान चंद्रमा हम सबको सौभाग्य प्रदान करे। यद्यपि इस श्लोक को सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु भीतर से अत्यंत प्रसन्न थे, किंतु बाहर से वे ऐसा बोले मानो क्रुद्ध हूँ। कृष्ण लीला रस विषय तुम्हारे उच्च कोटि के काव्यात्मक वर्णन अमृत के सागर के समान है, किंतु तुमने मेरे विषय में मिथ्या स्तुति क्यों कर दी है? यह अरुचिकर अम्ल की एक बूंद के समान है। श्रील रामानंद राय ने आपत्ति की, यह तो अम्ल नहीं है, यह तो वह कपूर का कण है जिसे उसने अपनी उच्च काव्य अभिव्यक्ति के अमृत में रख दिया है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मेरे प्रिय रामानंद राय, तुम इन काव्य अभिव्यक्तियों को सुनकर हर्षित हो, किंतु मैं इन्हें सुनकर लज्जित हूँ, क्योंकि सामान्य लोग इस श्लोक की विषय वस्तु के बारे में हंसी उड़ाएंगे। रामानंद राय ने कहा, उपहास के स्थान पर सामान्य लोग ऐसी कविता सुनकर परम आनंद का अनुभव करेंगे, क्योंकि आराध्य विग्रह की प्रारंभिक समृति सौभाग्य प्रदान करती है। रामानंद राय ने पूछा, अभिनेता किस शैली उपविभाग अंग से प्रवेश करते हैं? रूप गोस्वामी तब इसी विषय पर विशेष रूप से बोलने लगे। असभ्य लोगों के शासक कंस का वध करने के बाद मंच पर नृत्य करते हुए समस्त कलाओं के स्वामी भगवान कृष्ण उपयुक्त समय पर श्रीमती राधा रानी के साथ पाणी ग्रहण स्वीकार करेंगे, जो सभी दिव्य गुणों से युक्त हैं। यह प्रस्तावना शास्त्रीय रीति से उद्घात्य कहलाती है और संपूर्ण दृश्य वीथि कहलाता है। आप नाटकीय अभिव्यक्ति में इतने पटु हैं कि आपके समक्ष मेरा हर कथन दृष्टता के सागर से उठने वाली तरंग के समान है। किसी अस्पष्ट शब्द की व्याख्या करने के लिए लोग सामान्यतया इसे अन्य शब्दों से जोड़ते हैं, ऐसा प्रयास उद्घात्य कहलाता है। जब रामानंद राय ने श्रील रूप गोस्वामी से नाटक के विभिन्न अंगों के विषय में और अधिक बोलने के लिए कहा तो श्रील रूप गोस्वामी ने संक्षेप में ललित माधव से उदाहरण दिए। मार्ग पर गांवों तथा बछड़ों से उठी धूल एक तरह का अंधेरा उत्पन्न करती है, जो यह बताता है कि कृष्ण गोचारण भूमि से घर लौट रहे हैं। यही नहीं, संध्याकालीन अंधेरा गोपियों को कृष्ण से मिलने के लिए उद्दीप्त करता है। इस तरह कृष्ण तथा गोपियों की लीलाएं एक प्रकार के दिव्य अंधेरे से ढक जाती हैं। इसलिए वेदों के सामान्य विद्वानों के लिए देख पाना असंभव हो जाता है। भगवान कृष्ण की प्रामाणिक श्रुति वंशी की मधुर ध्वनि की जय हो, क्योंकि वह कुशलता पूर्वक श्रीमती राधा रानी की लज्जा को दूर करती है और उन्हें अपने घर से वन के लिए आकृष्ट करती है। हे प्रिय सखी, यह निडर युवक कौन है? यह बिजली से युक्त बादल की तरह तेजवान है और अपनी लीलाओं में उन्मत्त हाथी की तरह विचरण करता है। यह वृंदावन में कहां से आया है? हाय, यह अपने चंचल हाव भाव तथा आकर्षक चितवनों से मेरे हृदय की तिजोरी से धैर्य रूपी खजाना लूट रहा है। श्रीमती राधा रानी गंगा है जिसमें मेरा मन रूपी हाथी विहार करता है। वह मेरे नेत्र रूपी चकोरों के लिए शरद कालीन पूर्ण चंद्रमा है। वह चमचमाता आभूषण मेरे वक्ष स्थल रूपी आकाश के किनारे तारों की चमकीली तथा सुंदर सजावट है। आज मैंने श्रीमती राधा रानी को अपने मन की उन्नत अवस्था के कारण प्राप्त कर लिया है। यह सुनकर श्रील रामानंद राय ने श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों पर श्रील रूप गोस्वामी के कवित्व की अति श्रेष्ठता का निवेदन किया और उसकी इस तरह प्रशंसा करने लगे मानो उनके हजार मुख हो। श्रील रामानंद राय ने कहा, यह काव्य प्रस्तुति नहीं, यह तो अमृत की निरंतर वर्षा है। निसंदेह यह समस्त सिद्धांतों का सार है जो नाटकों के रूप में प्रकट हुआ है। रूप गोस्वामी द्वारा किए गए अद्भुत वर्णन प्रेम व्यवहारों को व्यक्त करने के लिए सर्वोत्तम व्यवस्था है। उन्हें सुनकर हर व्यक्ति के हृदय तथा कान दिव्य आनंद के भंवर में निमग्न हो जाएंगे। धनुर्धर के तीर अथवा कवि की कविता का क्या लाभ यदि वे हृदय में प्रवेश तो करते हैं किंतु सिर को चकरा नहीं देते। आपकी कृपा के बिना किसी सामान्य जीव के लिए इस तरह की काव्य रचना कर पाना असंभव होगा। मेरा अनुमान है कि आपने उसे यह शक्ति प्रदान की है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, मैं श्री लरूप गोस्वामी से प्रयाग में मिला था। उसने अपने गुणों के कारण मुझे आकृष्ट और तुष्ट किया था। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री लरूप गोस्वामी की दिव्य कविता के रूपकों तथा अन्य साहित्यिक अलंकारों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि ऐसे काव्य लक्षणों कवित्व के बिना दिव्य रसों का प्रचार करने की संभावना नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने समस्त निजी संगियों से रूप गोस्वामी को आशीर्वाद देने के लिए विनती की, जिससे वे वृंदावन लीलाओं का निरंतर वर्णन कर सकें, क्योंकि ये परम भगवान के भावात्मक प्रेम से परिपूर्ण हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, श्रील रूप गोस्वामी का बड़ा भाई जिसका नाम सनातन गोस्वामी है, इतना विवेकी तथा विद्वान पंडित है कि उसकी समता कोई नहीं कर सकता। श्री चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय से कहा, सनातन गोस्वामी का भौतिक संबंधों से विच्छेद तुम्हारे ही जैसा है। दीनता, वैराग्य तथा पांडित्य उसमें एक साथ पाए जाते हैं। मैंने इन दोनों भाइयों को वृंदावन जाकर भक्ति साहित्य का विस्तार करने के लिए शक्ति प्रदान की। श्रील रामानंद राय ने श्री चैतन्य महाप्रभु को उत्तर दिया, हे प्रभु, आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। आप चाहे तो एक काठ की पुतली को भी नचा सकते हैं। मैं देख रहा हूं कि आपने मेरे मुख के माध्यम से जिस दिव्य रथ से संबंधित सत्य की स्थापना की है, वह सब श्रील रूप गोस्वामी की रचनाओं में विवेचित है। अपने भक्तों पर अहेतु की कृपा के कारण आप वृंदावन की दिव्य लीलाओं का वर्णन कराना चाहते हैं। जिस किसी को भी ऐसा करने की शक्ति प्राप्त हो जाए, वह सारे जगत को आपके वश में ला सकता है। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी का आलिंगन किया और उनसे वहां उपस्थित सारे भक्तों के चरण कमलों की वंदना करने के लिए कहा। अद्वैत आचार्य, नित्यानंद प्रभु तथा अन्य सारे भक्तों ने रूप गोस्वामी का आलिंगन करके उन पर अपनी अहेतुकी कृपा प्रदर्शित की। श्रील रूप गोस्वामी पर श्री चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा तथा उनके व्यक्तिगत गुणों को देखकर सारे भक्त आश्चर्यचकित रह गए। जब श्री चैतन्य महाप्रभु अपने सारे भक्तों सहित चले गए, तो हरिदास ठाकुर ने भी श्रील रूप गोस्वामी का आलिंगन किया। हरिदास ठाकुर ने उनसे कहा, तुम्हारे सौभाग्य की कोई सीमा नहीं है। तुमने जो वर्णन किया है, उसकी महिमा कोई नहीं समझ सकता। श्रील रूप गोस्वामी ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता। मैं केवल वे ही दिव्य शब्द बोल सकता हूँ जिन्हें श्री चैतन्य महाप्रभु मुझसे कहलवाते हैं। यद्यपि मैं सबसे नीच व्यक्ति हूँ और मुझ में कुछ ज्ञान नहीं है, किंतु महाप्रभु ने कृपा करके मुझे भक्ति के विषय में दिव्य ग्रंथ लिखने की प्रेरणा दी है। इसलिए मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने मुझे इन ग्रंथों को लिखने का अवसर प्रदान किया है। इस तरह भगवान कृष्ण की लीलाओं के विषय में विचार विमर्श करते हुए श्रील रूप गोस्वामी ने हरिदास ठाकुर के संग परम सुख में अपना समय बिताया। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्तों ने उनके साथ 4 मास बिताए। तब महाप्रभु ने उन सब को विदा किया और वे बंगाल लौट गए। किंतु श्रील रूप गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में रुके रहे और जब ढोल यात्रा उत्सव मनाया गया, तो उन्होंने महाप्रभु के साथ इसे परम सुख पूर्वक देखा। जब ढोल यात्रा उत्सव समाप्त हो गया, तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को भी विदा कर दिया। महाप्रभु ने उन्हें शक्ति प्रदान की और उन पर सभी प्रकार की कृपा अर्पित की। महाप्रभु ने कहा, अब तुम वृंदावन जाओ और वहीं रुको। तुम अपने बड़े भाई सनातन को यहाँ भेज सकते हो। जब तुम वृंदावन जाओ तो वहां रुकना, दिव्य साहित्य का प्रचार करना और विलुप्त पवित्र स्थलों को प्रकाशित करना, भगवान कृष्ण की सेवा स्थापित करना और भगवान कृष्ण की भक्ति के रसों का प्रचार करना। मैं भी एक बार पुनः वृंदावन जाऊंगा। इस तरह कह कर श्री चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी का आलिंगन किया। तब उन्होंने अपने सिर पर महाप्रभु के चरण कमल रखे। श्रील रूप गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु के समस्त भक्तों से विदा ली और वे बंगाल के रास्ते होकर वृंदावन लौट आए। इस तरह मैंने श्रील रूप गोस्वामी तथा श्री चैतन्य महाप्रभु की द्वितीय भेंट का वर्णन किया है। जो भी इस घटना को सुनता है वह निश्चय ही श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की शरण प्राप्त करेगा। श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों की वंदना करते हुए और सदैव उनकी कृपा की आकांक्षा करते हुए मैं कृष्ण दास उनके चरण चिन्हों पर चलकर श्री चैतन्य चरिता अमृत का वर्णन कर रहा हूँ। इस तरह श्री चैतन्य चरिता अमृत अंत्य लीला के श्रील रूप गोस्वामी तथा चैतन्य महाप्रभु की द्वितीय भेद शीर्षक प्रथम अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।